چلے یہ پرندے ہانس لے اب جوان ہے اڑ چلے یہ پرندے ہانس لے اب جوان ہے نہ رکے گا یہ کارواں دور ہم سے نہیں اب آسمان ہے قدم سے قدم مل چلے آپ ہیں ساتھ میں جب چلے ہے امنگ ہے اللہ ایک دھائی سو نیا وشوا ایک دھائی سو نیا وشوا
अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। खोल दो बंद दिलो दिमाग की खिड़कियां कि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अमित वाधवा। नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक के सफर में हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा जैसे विषयों पर एक नया ज्ञान प्राप्त किया है। हमारा स्वयं के प्रति और संस्था के प्रति एक नया विश्वास जागृत होता चला जा रहा है। लेकिन संस्था के प्रति कुछ और जिज्ञासाएं जो हमारे मन में हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने की आज हम कोशिश करेंगे। और इसीलिए इस मंच पर एक बार फिर हम आमंत्रित करते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय संतोष दीदी जी को, जो कि संस्थान की ओर से रशिया में ईश्वरीय सेवारत हैं। दीदी जी, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है।
थैंक यू
दीदी। आपके माध्यम से हमें आत्मा का ज्ञान मिला, स्वयं के प्रति एक नई सोच मिली, लेकिन अभी भी कुछ जिज्ञासाएं हमारी संस्था के प्रति मन में, उनके उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। जैसे हम वस्त्र की बात करें, वस्त्र किसी भी व्यक्ति की विचारधारा का दर्पण होता है, लेकिन बात जब हमेशा एक जैसी वेशभूषा की आती है, ब्रह्मा कुमारी इसमें देखें तो हमेशा सफेद वस्त्र पहनते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है तो नीरसता और संन्यास का परिचायक हो जाता है जीवन के प्रति। क्या ये इतना अनिवार्य है?
मैं जब ब्रह्मा कुमारी इसमें पहली बार आई और मैंने सफेद ड्रेसेस देखी, तो मेरे लिए ये प्रश्न नहीं था कि नीरसता है, बाकी मुझे ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि अगर मैं यहाँ से कनेक्ट होना चाहती हूँ तो क्या मुझे भी वाइट ड्रेस डालनी पड़ेगी। तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपको वाइट ड्रेस डालनी है। और जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मैं अपनी उस सूटकेस को खोल करके वो कलर वाली ड्रेस को उठा करके डाल नहीं पा रही थी, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो गुड इन साइड। मुझे मेडिटेशन से इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे लगा कि ये जो मेरी अंदर की स्थिति है उसके लिए ये जो बाहर का जो कपड़ा है वो मैच नहीं कर रहा। आई वॉज फीलिंग सो गुड एंड सो नाइस इनसाइड, सो आई वॉन्टेड टू मैच एवरीथिंग आउटसाइड। और दूसरा, मैंने ये भी देखा कि अगर आप अपने मन को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, आप ये ट्रायल करिए कि सारे दिन के अंदर आप वाइट ड्रेस डालते हैं जिस दिन, तो आप अंदर कुछ और सोचते हैं, आपको खुद ही अफसोस होता है। ड्रेस तो वाइट है और बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। सो एज इफ यू फोर्स योरसेल्फ टू स्टॉप, ये ब्रेक है। नहीं तो मैं खुद ब्रेक नहीं करूंगी, आप आएंगे सामने, आप कहेंगे बहन जी अच्छा आप ड्रेस वाइट है, लेकिन ये आप क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, कैसा मूड आपका था। सो जैसे कि मैंने आपको भी राइट दे दिया मेरा टीचर बनने का। सो दिस इज अ सपोर्ट, हेल्प। तो जब हम चाहते ही हैं अच्छा बनना, बेस्ट बनना, सो दिस इज द बेस्ट आइडिया.
जी,
आई थिंक वी शुड वेलकम दैट.
जी दीदी, ये तो एक तरह का रिमाइंडर हो गया. जैसे हम कभी सफेद कपड़े पहनते तो एक चिंता लगी रहती है कि कहीं उस पर कोई दाग न लग जाए. तो अपने मन पर, जैसा कि आपने समझाया हुआ है कि श्रेष्ठ संकल्प, तो उसको भी खर्च ना हो जाए और कुछ गलत ख्याल ना आए.
श्योर, एक्सेप्ट.
दीदी, एक बात और आती है मन में, संस्था में आने वाले भाई बहन, उनके लिए भी अनिवार्यता नहीं है ना ये?
ये तो आप समझ ही गए हैं कि ये हेल्प करता है आपको शांति का अनुभव करने के लिए, एकाग्रता का अनुभव करने के लिए. बाकी किसी के ऊपर ये थोपा जा ही नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या ड्रेस डाल करके आ रहे हैं, लेकिन स्वतः ही आपका मन उसकी तरफ खींचता है. तो इसलिए बांधा क्यों जाए किसी को.
तो जैसे मन शांत है तो शांति का प्रतीक सफेद रंग कहा ही जाता है, पवित्रता का प्रतीक सफेद रंग कहा ही जाता है.
जी.
तो हम सभी चाहें तो सफेद वस्त्र पहने, न भी पहने तो हमारी मर्जी है. दीदी, आध्यात्म और संस्कृति में हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर रहा है, लेकिन वर्तमान समय अगर देखें तो मूल्यों में बहुत गिरावट आई है. आज हर कोई इतना स्वार्थी हो गया है, और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें देखने सुनने को मिलता है कि कई संत महात्मा श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अनुचित लाभ उठाते हैं. ऐसे समय में आप अपनी संस्था की विश्वसनीयता कैसे सिद्ध करेंगे?
कोई भी संस्था की जो साख है वो लोगों के मन में हम बनी रहती है या टूटती है, उसके दो कारण होते हैं. एक कारण होता है कि आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं.
जी.
अगर मैं संस्था हूं और 10 लोगों की संस्था हूं, तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 10 से कम 10 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 7, क्या हम सब वही कर रहे हैं जो कह रहे हैं, या कम से कम हमारी उतनी करने की भावना है, हम चाहते हैं, और क्या हम अपनी गलतियों को महसूस करते हैं. तो हमारी जो रेपिटेशन है, हमारी जो रेटिंग है आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में अगर कहें, तो वो बनी रह सकती है. और दूसरा कारण होता है, चाहे वो देश में कहो, चाहे विदेश में कहो, चाहे वो धर्म की संस्था हो, चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, ट्रांसपेरेंसी. इफ पीपल आर एबल टू सी थ्रू यू, वो कभी भी आपके ऊपर शक नहीं करेंगे. वो क्योंकि आपको आर पार दिखाई दे रहा है. तो क्या मतलब है आर पार दिखाई देना? अब आपके शरीर के अंदर कुछ अंग हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, आंखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन लंग्स दिखाई नहीं दे रहे, किडनी दिखाई नहीं दे रही, हार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पैनक्रियास दिखाई नहीं दे रही. तो अगर मैं आपको चैलेंज करूं कि आप सिद्ध करो कि आपके पास लंग्स हैं कि नहीं है, तो आप कैंची उठाकर काट करके तो नहीं करेंगे. ये मेरी अज्ञानता है. अगर मैं ट्रांसपेरेंसी के नाम से मैं चाहती हूं आपकी जो वाइटल सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन काम कर कैसे रही है, वो आप मुझे सिद्ध करो, वो मुझे हर एक चीज का हिसाब दिखाओ, ये तब हमें पता पड़ेगा क्या पैसा कहां जाता है. That is a little bit of ignorance. क्योंकि अगर vital organs को, system को अगर काट करके transparent कर दें तो वो तो चलेंगे नहीं. इसीलिए तो प्रकृति ने उसको अंदर रखा है.
जी.
तो जो बातें सबके जानने योग्य हैं,
हाँ जी,
वो जरूर available होनी चाहिए. और जो बातें हैं जिनका सिस्टम से कनेक्शन है, तो वो सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को ही पता है, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो योग्यता है, उनका जो विश्वसनीयता का की जो पर्सनालिटी है, वो इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं. तो ट्रांसपेरेंसी भी बहुत मदद करती है. तो मुझे नाज है कि मैं उस संस्था का हिस्सा हूं जिसके अंदर ये दो चीजें कदम रखते ही मैंने पाई. क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज ऑलवेज स्केप्टिक, हमेशा जैसे कि जिसको कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है. हमेशा ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए जो मुझे फिर बाद में स्टेप बैक करना पड़े. लेकिन मुझे नाज है कि इतनी अच्छी तरह से जो कारोबार किया जाता है, इट्स अ बिग ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, अध्यात्म और व्यवस्था, इन दोनों को कंबाइन करना सहज नहीं है
जी।
लेकिन इन दो चीजों के आधार पर, हाँ, अगर आप कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो ये हमको जब मिलता है तो जरूर हमारी साख बनी रहती है
जी। दीदी, आपका अनुभव वर्षों का सकारात्मक रहा, लेकिन क्या कभी संस्था के व्यवस्था के प्रति किसी ने उंगली नहीं उठाई?
नहीं, बहुत उठती है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको जब संपर्क में आए तो एकदम से वही दिखाई दिया जाए जो जिसके लिए आप आए थे। फॉर एग्जाम्पल, कि छोटी सी बात के मैं बताती हूँ कि जब हमने रशिया में सेवाएं शुरू की तो जस्ट वन थिंग कि जो लोग सुनने के लिए आते थे तो वो उनका जो बिलीफ सिस्टम था, फेथ था, पहले कईयों का क्रिश्चियनिटी होने के कारण वो कोशिश करते थे कि वहां से उनको शांति मिले, लेकिन कुछ न कुछ कमी होने के कारण वो जब मेडिटेशन सीखने लगे, आने लगे, उनको अच्छा लगा, डिस्कशन करते थे, अपने प्रश्नों को पूछते थे, हम पूरा टाइम देते थे, तो एक हफ्ते के अंदर उनको इतना परिवर्तन आया कि बहुत से लोगों ने उस खुशी में आकर जाकर के प्रीस्ट को बोला कि आप तो हमको कभी प्रश्न पूछने की आजादी नहीं देते थे, और ब्रह्मा कुमारीज में तो कभी भी किसी भी प्रश्न को आप पूछेंगे, तो अब ये उनकी अज्ञानता है कि आप ऐसे सीधा जाके बोलेंगे हमने तो क्रिश्चियनिटी की बुराई नहीं की है, हमने किसी धर्म की बुराई नहीं की है, लेकिन वो जिसने बेनिफिट मेडिटेशन का लिया उसने अपनी इमोशनल भाषा में जाकर के किसी को तारीफ की है तो उनकी ईगो तो प्रवोक होगी, तो जब ईगो हर्ट हुआ है तो वो फिर किसी न किसी चीज को लेके संस्था के प्रति उंगली उठाते हैं कि ये तो धर्म का स्थान लेने आए हैं या ये हमारी सीट हटाने आए हैं। तो ऐसी ऐसी जब बातें होती हैं तो उसको बुरा समझने की बजाय, घबराने की बजाय, फिर भी हम तो कोशिश ये करते हैं। मैंने उस केस में जाकर के क्रिश्चियन प्रीस्ट से हाथ भी जोड़े और बोला नहीं, हम तो इस देश की सेवाधारी हैं, आपकी छोटी बहनें हैं, जितना हमसे हो सकता है हम ईश्वर के साथ योग लगाकर जो हमें शक्ति और समझ मिल रही है हम उसको शेयर कर रहे हैं
जी।
बाकी आप मालिक हैं, आप जैसा अपना कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। वो तब से लेकर के आज दिन तक वो मुझे अपनी बहन मानते हैं और हर फेस्टिवल के समय वो हमारे पास आते हैं और मुझे वो चर्च में बुलाते हैं। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही उंगलियां उठती हैं, बट इट्स फाइन, देर आर रीजंस एंड दे आर वेलकम टू गेट आंसर्स फॉर दैट।
तो दीदी, कहने का मतलब यह है कि अगर उंगलियां उठती भी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कम समझ के कारण उठी हैं, अदरवाइज ट्रांसपेरेंसी पूरी है।
जी जी जी।
दीदी, हमारे बीच में दर्शक भी मौजूद हैं और उनके मन में भी कई प्रश्न उठते हैं संस्था के प्रति, आइए उनसे पूछ लेते हैं कुछ प्रश्न।
नमस्ते दीदी जी, मेरा नाम नितिन है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा देवता हैं, लेकिन आपके संस्था के स्थापक भी ब्रह्मा हैं जो कि एक मनुष्य हैं, और यहाँ तक कि आप अपने फॉलोअर्स को भी ब्राह्मण कहते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है?
ये बात जो है फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की, ब्रह्मा बाबा, किस प्रकार से हम उनको ये कहते हैं, ये आइडियोलॉजिकल पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट है, तो कई लोग इसको चैलेंज करते हैं। तो मेरा हमेशा इन बातों के लिए ये विचार रहता है अपने अनुभव के आधार पर
जी।
कि अगर हमें सचमुच किसी बात के बारे में प्रश्न है और हम उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो हम अच्छी तरह से समय लेकर के संस्था में जा करके जो इस विद्यालय का कोर्स है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम है, उसको हम समझें। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्या मैं उत्तर से भागने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं, लेकिन मैं ये मानती हूँ, मेरा ये बिलीफ है कि अगर हम किसी चीज को स्पष्ट देखना चाहते हैं कि ये जो आपने कमीज डाली है, शर्ट डाली है, किस चीज की बनी हुई है, मैं हर धागे को देखना चाहती हूँ, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आपके पास तो नहीं आना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। फैक्ट्री वाले मुझे बताएंगे कि ये ऐसी क्यों चमक रही है
जी।
या ऐसी क्यों नहीं चमक रही है। तो इसी प्रकार से आइडियोलॉजी क्लियर करने के लिए हम उसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका आधार क्या है, वो समझना जरूरी है। और वो आधार जो है, अनुभव करने के बाद फिर जब आप उस चीज को देखते हैं तो आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि क्या आपको ये उचित लगता है। अब जहां तक ब्रह्मा की बात आती है, ब्रह्मा शब्द माना क्रिएटर
जी।
ब्रह्मा शब्द तो जो बर्तन बनाने वाले भी, बर्तन गाड़ने वाले के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो भी क्रिएट करता है। तो कोई जानवर भी जो बच्चे पैदा करता है, क्रिएट करता है, पशु पक्षी भी, वो भी ब्रह्मा है अपने बच्चों के, अपने क्रिएटर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा शब्द वो धर्म की प्रॉपर्टी है, नहीं, ये सिंबॉलिक है, क्रिएशन का सिंबॉलिक है। अब क्रिएशन के भी लेवल है। अब जानवर और पशु पक्षी तो सिर्फ अपनी ही क्रिएशन करते हैं, इंसान जो क्रिएशन करता है वो समाज के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। तो उस क्रिएटर के लेवल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ हद के ब्रह्मा होते हैं, वो तो करोड़ों हैं
जी।
अपने बच्चों को पैदा करने वाले, रचना करने वाले, उनकी पालना करने वाले करोड़ों हैं, वो हद के बापूजी हैं। लेकिन प्रजा का ब्रह्मा, प्रजा का पिता अर्थात पूरी समाज का पिता, अर्थात उन सब आत्माओं को फिर से नया जीवन देने वाला, वो कौन है? वो यहाँ तो कोई नहीं है। तो जरूर ऐसा कर्तव्य परमात्मा ही करते हैं, लेकिन वो परमात्मा जिस व्यक्ति के द्वारा करते हैं उसका टाइटल रखते हैं ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा मनुष्य रूप में परमात्मा का माध्यम बनता है। तो अब ये बात आप तभी स्वीकार कर सकते हैं जब आप सबसे पहले समझें कि आत्मा क्या होती है
जी।
आत्मा का फिर से पुनर्जन्म या आध्यात्मिक जन्म कैसे होता है
जी।
और हम सब आत्माएं कहाँ से आती हैं? क्यों परमात्मा को जरूरत पड़ती है आत्माओं को फिर से रचने की, अर्थात उनको जागृत करने की? तो जब तक ये समझा नहीं है, आप किसी भी आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन करेंगे, हाँ उस समय आपको पसंद नहीं आ रही है बात, क्योंकि आप पूरी तरह से कई बातों को अभी जानते नहीं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करके समय दीजिए, कोर्स करिए, तो जरूर आपको ये बात दिल से लगेगी कि इस की प्रजापिता ब्रह्मा को ये टाइटल देकर के क्या मैसेज दिया जा रहा है। हम उनको कोई भगवान के स्थान पर नहीं रख रहे हैं, लेकिन परमात्मा जो कार्य ज्ञान देकर के उनके द्वारा कर रहा है, हम वो महत्व दिखा रहे हैं। अब आप उसको समझेंगे, आपको उससे फायदा होगा, हमें भी खुशी होगी
जी। जी जी दोस्तों, वैसे भी अभी तक का हमारा ये अनुभव रहा है, दीदी ने बड़े ही तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण रीति से हमें समझाई है कोई भी बात, और यदि किसी बात में अभी भी संशय है तो उसे विस्तार से संस्था पर जाकर के समझा जा सकता है। पर दीदी, एक सवाल मेरा भी है, जब भी संस्था में कोई जाते हैं तो उन्हें फिर ब्राह्मण कहकर के संबोधित किया जाता है, ये इसके पीछे क्या रहस्य है?
तो कोई भी संस्था में आता है वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार कुमारी
जी,
वो आत्मा ये टाइटल प्राप्त कर सकती है जिसने अपने जीवन में आत्मिक मूल्यों में नीचे नहीं गिरना है, ये संकल्प कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, शूद्र ब्राह्मण, तो शूद्र वो आत्मा की अवस्था है जब हम अपने को खुली छुट्टी देते हैं कोई भी विकारी संकल्प वचन या कर्म करने के लिए। तो जब भी आप ऐसा कर्म करेंगे तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, अर्थात सुख शांति आपकी इन नेगेटिव कर्मों से कम होगी, तो आप गिरेंगे। अब गिरते तो बहुत समय रहे, तो वो हमारी शूद्र अवस्था है। शूद्र कोई शेड्यूल कास्ट वाले को नहीं कहते हैं, कोई कहीं जन्म लेने से हम शूद्र नहीं बन जाते, नीचे नहीं बन जाते। जब आप स्पिरिचुअली कोई भी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व करने का, अपने को ना इन्वॉल्व करने का डिसीजन लेते हैं, दैट्स द मोमेंट यू स्टार्ट राइजिंग। तो ये ऊपर चढ़ने वाले को ब्राह्मण कहते हैं, जो अपने को रिक्रिएट करता है, आत्मिक मूल्यों में रिक्रिएट करता है। सिर्फ आप आएंगे सेंटर पर और खुशी की मिठाई खाएंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनेंगे, या आप तारीफ करेंगे कि ये तो भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, आपको कोई ब्राह्मण का टाइटल नहीं मिलेगा, आप सिर्फ ऑडियंस होंगे
जी।
हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल लेने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब मुझे जो है अपनी सुख शांति आनंद को खत्म नहीं करना, अब बढ़ाना है। तो एवरीवन हैज राइट टू बी एंटाइटल्ड। इफ आई एम इंक्रीजिंग माय डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, आई एम फुली क्रेडिटेबल टू गेट दिस टाइटल ब्राह्मण।
दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो टाइटल है शूद्र और ब्राह्मण, ये जातिगत नहीं है, ये एक्चुअली आध्यात्मिक पथ पर जो अग्रसर हो गए उन्हें ब्राह्मण हम कह रहे हैं
जी।
और जो नहीं हो पा रहे हैं, जो नेगेटिव संकल्प कर रहे हैं या नेगेटिव कर्मों में लिप्त हैं, कहीं ना कहीं उनकी अवस्था वैसी है
जी।
जी दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, और हम भी आध्यात्मिक पथ पर ही तो अग्रसर होना चाह रहे हैं। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना अर्थात स्वयं की, अर्थात आत्मा की उन्नति करना, क्योंकि जब हम स्वयं शब्द अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पता चल चुका है कि हम कौन हैं, और अगर हम इस पथ पर अग्रसर हैं तो संस्था के मुताबिक फिर उन्हें ब्राह्मण का टाइटल दिया जाता है। दीदी, एक और प्रश्न है मेरा। कई ऐसे यूथ भाई बहने हैं जो आपके सेवा केंद्रों पर रहते हैं, सेवाएं देते हैं और समर्पित हैं वो एक तरह से, तो क्या उन्हें नौकरी करने से मना किया जाता है?
नौकरी का मतलब आपसे ये है कि हम काम करें और हमको पैसा मिले
जी।
अगर ये है तो मना नहीं है। कोई भी कैसा भी काम करके अगर कुछ अर्निंग करना चाहता है, उसके लिए किसी को क्यों मना किया जाएगा। लेकिन काम वो यहां ही क्यों कर रहे हैं, मैं समझती हूँ प्रश्न ये उठना चाहिए
जी।
क्योंकि जब हम वॉलंटियर करते हैं किसी संस्था के लिए अपने को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये जो मिशन है इस संस्था का, वो मेरी आइडियोलॉजी से, मेरी चाहना से, मेरी साइकोलॉजिकल स्टेज से मैच करता है। क्या मैं भी समझती हूं कि हाँ, अभी विश्व के अंदर में ऐसे लोग होने चाहिए जो पॉजिटिव हैं, जो कोऑपरेटिव हैं और जो अच्छी तरह से समाज को नया बनाने में मदद कर सकते हैं। सो ओके, वेलकम। मैं अपना टाइम एनर्जी देने के लिए यहां पर फ्री हूं। तो इसलिए जो भी यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किसी को देख के नहीं आए हैं, किसी के कहने से नहीं आए हैं। ऑफ कोर्स हमारी पर्सनालिटी किसी को इंस्पायर कर सकती है
जी।
लेकिन डिसीजन तो हर कोई अपने आप ही करता है, और अगर डिसीजन करने के बाद भी अगर उसको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये काम अभी कर लिया है, मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो वो फ्री है
जी। मतलब बाउंड नहीं है,
बाउंड नहीं है।
तो दोस्तों, बात स्पष्ट है कि जितने भी यूथ भाई बहने हम देखते हैं समर्पित रूप से जो सेवाएं दे रहे हैं, उनका एक श्रेष्ठ संकल्प है कि स्वयं को परिवर्तित करके समाज के, विश्व के निर्माण में योगदान देना। दीदी, दर्शक हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं आपसे पूछने के लिए। आइए उनसे जान लेते हैं।
नमस्ते दीदी जी, मैं बिहार से आई हूँ। ऐसा सुना जाता है कि आपके संस्था में अमीर लोग और वीआईपी लोगों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है और आम लोगों को कम दिया जाता है। दीदी जी, ऐसा क्यों?
मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छी तरह से संस्था के संपर्क में आएंगे तो शायद ऐसा लगना बंद हो जाए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी तो चैरिटेबल संस्था है। ये आपको कोई प्रॉमिस नहीं करती है कि आप आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ फिजिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। ये आपको गारंटी देती है आपकी आध्यात्मिक शिक्षा, जो हर एक व्यक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, वो फ्री ऑफ चार्ज मिल सकती है
जी।
उसके लिए सब एक समान है। उसके लिए आप जिस समय जिस प्रकार की सेवाओं को हमसे चाहते हैं, मैं समझती हूँ वो हर सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए कोई भी शुल्क भी नहीं लिया जाता। हाँ, जब बात आती है फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटीज के लिए जरूर ये हो सकता है कि जो संस्था को चलाने में, संस्था के कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में सपोर्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, तो वो अपना ये कार्य समझ के जो कर रहे हैं, तो उनके आने पर, उनके उपस्थित होने पर, उनको अपने हिसाब से अगर कोई फैसिलिटीज चाहिए तो संस्था बाउंड है उसको प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि वो शेयर होल्डर है इसकी एग्जिस्टेंस में। तो इसलिए हमको अगर देख करके ये लगता है कि किसी को कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल रही है, अच्छा भोजन मिल रहा है और मुझे तो सिर्फ ज्ञान सुनाया जा रहा है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को आपने खाते हुए यहाँ पर देखा है, आपको दाल रोटी मिली है, आप आ सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे भी गुलाब जामुन खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि जब संस्था खुद ही चैरिटेबल है, अर्थात कोई भी कमर्शियली इनकम किसी भी अपनी एक्टिविटीज से रेज नहीं करती है, तो हम यहाँ आने वालों को ज्ञान, सुख, शांति, प्यार ये प्रॉमिस करते हैं, वो सबके लिए बराबर है। बाकी जब फैसिलिटीज की बात आती है, तो जितना जितना जो इसको सपोर्ट करने में, रेस करने में मदद कर रहा है, वो अपने लिए अगर कुछ इस प्रकार की फैसिलिटी चाहता है वो उसको मिलती है। इसमें जस्ट समथिंग वेरी कॉमन विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दैट वे। तो वो हमारी सोच थोड़ी सी ब्रॉड हमें बनानी पड़ेगी कि हम कई बार जेलसी में आके, कंपटीशन में आके अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं है।
जी दीदी, तो कहीं ना कहीं शायद वो कंपैरिजन की वजह से ऐसा ख्याल उठ सकता है। मैं समझता हूं दीदी ने आपको जो उत्तर दिया है उससे आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे, और अधिक उससे फिर अगर आप समझना चाहते हैं तो संस्था के साथ जुड़ करके हम गतिविधियों को समझ सकते हैं। दीदी, एक बार फिर आपने बहुत सारे प्रश्नों के, भले ही कई सारे टेढ़े प्रश्न थे, उसमें बड़े ही शांत चित्त से हमें संतोषजनक उत्तर दिए। अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी थैंक्स।
दोस्तों, आज के एपिसोड में भी कई सारे प्रश्नों का समाधान हमें मिला और हमें खुला निमंत्रण भी मिला कि हम ब्रह्मा कुमारी संस्था पर जाकर के संस्था की गतिविधियों को समझ सकते हैं, साप्ताहिक कोर्स भी कर सकते हैं जो कि सभी सेवा केंद्रों पर निःशुल्क सिखाया जाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।